अल्लाह अकबर फरमाया फकैफा, फिर देखिए दुनिया के अंदर तो तुम देखते हो, चाहते हो कि सब अच्छा अच्छा रहे, दोनों तरफ हमारी स्टैंडिंग रहे, दोनों तरफ हमारे लिए जगह रहे। उस वक्त क्या होगा, इजा तवफ्फत हुमुल मलाइका, तो जब फरिश्ते फौत करेंगे इनको, तब बताओ या दरीबूना वजूह हम व दोबारा हम। ये जो मुनाफिक की सजा है ना, वो वही है जो कि काफिर की है। मुनाफिक का ये नहीं कि उसको इस वजह से कुछ ज्यादा कोई कोई उसको लेवरेज मिल जाएगी क्योंकि उसने कलमा पढ़ा था, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए, कोई उसको सहूलत नहीं मिलेगी कि वो कलमा पढ़ने वाला था, नमाजें पढ़ने वाला था। वो मुनाफिक है तो फिर उसका भी वही अंजाम है जैसे कि काफरों के लिए कहा गया कुरान के अंदर कि जब उनकी जानें निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे तो कहेंगे, अपने हाथ फैला फैला के उनकी तरफ कहेंगे, निकालो इन जानों को अब, और तुम्हारे लिए जलने का अजाब है। तो इनकी भी हालत ये होगी कि फरिश्ते इनको मारेंगे इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर। इसीलिए निफाक बहुत बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि ये कुफर की कुफर के अंजाम तक इंसान को ले जाती है। जो कुफर का अंजाम है वो ही इसका अंजाम है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो जब हम देखते हैं काफरों के अंजाम को, तो उनका जो उनकी जो सजा है ना, वो आखरत में जाके तो वहां पे कयामत के दिन जाके तो जो मिलनी है सो मिलनी है, मौत के वक्त से ही शुरू हो जाती है। मौत के वक्त से ये हाल हो जाता है कि उनके चेहरों पे और पीठों पे फरिश्ते मारते हैं उनको, कहते हैं निकालो अपनी जाने, और जान निकलना नहीं चाहती। उनको डांट और उनको मार और उनकी जिल्लत तब से शुरू हो जाती है। ये हाल होता है उनके साथ। तो इस वक्त आज तो तुम बड़े बने फिर रहे हो, आज तो हर तरफ फायदे, आज तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए, आज तो ऐसे ना हो जाए, इसकी फिक्र है। उस वक्त क्या हाल होगा जब मौत आएगी। हालांकि दुनिया में मना किया गया है कि किसी को उसके चेहरे पे ना मारा जाए, अगर किसी को सजा भी देनी हो तो फिर भी चेहरे को ना मारा जाए। अल्लाह ताला ने चेहरे को इकराम दिया, इज्जत दी है, तो चेहरे पे मारने से मना किया गया, लेकिन मौत के वक्त इनके चेहरों पे मारा जाएगा। चेहरा बहुत सेंसिटिव जगह होती है, उस पे इनको मारा जाएगा। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने मौत के दर्दनाक मंजर को दिखा दिया। देखो उल्टे पांव फिरने का अंजाम तुम्हें समझ आ गई थी ना, समझ आ गई थी, फिर भी तुम फिर गए, फिर भी तुम लंबी उम्मीदों में पड़ गए। यानी समझ आने के बाद इंसान का फिरना कितना बुरा है, सोचे। एक बंदा है उसको समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, एक बंदा पता है फिर भी ढीठ होके करेगा, उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है ना कि तुम्हें पता था तुमने फिर ये किया। तो ये चीज अल्लाह ताला को इतनी सख्त नापसंद है। दुनिया में तो इंसान घूमता फिरता रहता है और सोचता कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर ये आजादी लिमिटेड है, ज्यादा देर की नहीं है, हमेशा की नहीं है। ये अल्लाह ने आजादी दी भी है तो इसको ये ना समझना कि अल्लाह भूल गया। इस तरह की हरकतों का फिर ये अंजाम है। ज़ालिका, ये भी अन्ना हूं बवजह इसके के बेशक, यानी ये क्यों है, क्यों अंजाम इनका ऐसा हुआ, इसलिए कि बेशक इत्तबाउ मा असखत अल्लाह, इन्होंने उसकी पैरवी की जिसने गुस्सा दिलाया अल्लाह को। इन्होंने वो काम किए हैं जिनसे अल्लाह को गुस्सा दिलाया, अल्लाह को नाराज किया इन्होंने। वकरी हो रिदवाना हो, और इन्होंने कराहत की उसकी उसकी रजा की, उसकी रजा को पाने से कराहत की। यानी क्या मतलब है, इनको कोई परवाह नहीं थी। ये अंजाम उनका इसलिए हुआ कि इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अल्लाह हमसे नाराज है, हमसे राजी है, क्या है, उनको कोई शौक ही नहीं था अल्लाह को राजी करने का। वो काम करते थे जो अल्लाह की नाराजगी के थे। कभी इंसान गौर करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अल्लाह की खुशी है या इसमें नाराजगी है। अगर कोई गौर ही नहीं ना करता, अगर किसी को ये परवाह ही नहीं, आई डोंट केयर, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, तो वो उन्हीं में शामिल है जिसने इत्तेबा की उन चीजों की कि जो अल्लाह को नाराज करने वाली है और ना पसंद करता है उसकी रजा को। अल्लाह की रजा तो इसमें थी कि ईमान लाते और उस पर जम जाते, समेना वाताना करते, अपनी हर चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते। और इनको अल्लाह की रजा कहाँ चाहिए थी, इनको तो अपने फायदे देखने थे ना। तो बाज अमल ऐसे होते हैं जो अल्लाह की नाराजगी के होते हैं, उनको इंसान ढिटाई के साथ इस तरह से करता रहे कि मुझे ही परवाह, आई डोंट केयर, ये तो फिर इंसान को इस अंजाम तक पहुंचा देती है कि जो यहां पे कहा गया। इससे पता चलता है कि मौत भी हर एक की कोई बहुत खुशगवार नहीं होती, कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मौत तकलीफ दे हो जाती। और एक वजह यहां पता चली, परवाह ना करना कि अल्लाह किस में खुश होता है किस में नाराज होता है, इस बस मेरी खुशी हो जाए, दैट्स इनफ। अल्लाह खुश है या नहीं खुश है इसका कभी सोचना ही नहीं, ये भी बुरे अंजाम तक पहुंचा देती है। और क्या बात बुरे अंजाम तक पहुंचाती है, जब हक वाजे हो गया फिर इर्तेदाद करना, फिर भी फिर जाना। और जगहों से भी हमें पता चलता है जब अल्लाह की आयात से तकबर किया जाए यानी उनका इनकार किया जाए तब भी तकलीफ दे मौत होती है। फिर इसी तरह और जगह पे है जब अल्लाह ताला के एकामात का मजाक उड़ाया जाए, जब अल्लाह की रजा को नापसंद किया जाए तब भी मौत तकलीफ दे होती है। इसी तरह अल्लाह ताला पर ना हक बातें जब की जाए यानी दीन में ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर लें जो अल्लाह ने बताई नहीं, ना हक अल्लाह के ऊपर लगा देना, नहीं अल्लाह का हुक्म ही है, बिदात भी उसमें आ गई, तो दीन का हुलिया ही कुछ और से और बना के रख दिया। ये अल्लाह के ऊपर बातें बनाना है, अल्लाह का ये फरमान है, हाँ अल्लाह ने ये चाहा है और ऐसा कुछ भी ना हो, ये सब चीजें तकलीफ दे मौत की वजह बनती हैं। और यहां पे एक वजह आपको पता चली गई, तो उन्होंने अल्लाह की नाराजगी का रास्ता इख्तियार किया। और जो ऐसा करेगा फिर क्या होगा, फअहबत आमालहुम। अब इंसान सोचता है लेकिन हो सकता है वो कोई नेकियां भी तो करते हो, उनकी नेकियों का क्या बनेगा, क्या उनकी नेकियां नहीं उनको बचा लेंगी? नहीं, ऐसे लोगों की नेकियां अल्लाह ने जाया कर दी, यानी जो वो अच्छे काम कोई करते होंगे, कोई चैरिटी वर्क किया, कोई जमात से नमाजें पढ़ ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, लेकिन जब दिलों में ही मुनाफ़क़त है, जब तुम्हें इस चीज़ की परवाह ही नहीं कि तुम अल्लाह को नाराज कर रहे हो या राजी कर रहे हो, तो फिर नेक आमाल भी ज़ाया हो गए। अब कितनी दफ़ा जिक्र आया ना और आगे भी आएगा कि नेक आमाल किस किस तरह ज़ाया हो जाते, इनमें कुफर भी है, इनमें शिर्क भी है जिससे नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं, इसमें रियाकारी भी है जिससे नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं, हराम कमाई से कमाया हुआ माल यानी जो हराम कमाई है उससे भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, और फिर शराब पीने से भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, नजूमियों के पास जाने से भी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, तकब्बुर से ज़ाया हो जाती हैं, जुए से ज़ाया हो जाती हैं, और तन्हाई में अल्लाह से बेखौफ हो जाने से भी ज़ाया हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, उनसे आगे बढ़ जाना, आगे हम सूरह हुजरात में पढ़ेंगे, उससे भी ज़ाया हो जाती हैं नेकियां। नेकियों के ज़ाया होने की बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए इंसान कभी भी इस चीज़ के ऊपर ना जूम करे कि जी मैं तो इतने हज करके आ गई, मैंने तो इतनी ज़कात दे दी, मैं तो इतने सदका करती हूँ कि बस, मैं तो तहज्जुद इतनी पढ़ती हूँ, मैं तो इतनी नेक हो गई हूँ, मैं तो क्लासें इतनी लेती हूँ, मैं तो इतने काम करती हूँ नेकी कि इतनी भाग दौड़ करती, मेरा तो सारा दिन इसी में गुजरता है। आपको नहीं पता, अल्लाह चाहे तो वो आमाल को ज़ाया कर दे, इट डजंट नीड। लेकिन आप किसी को कोई तोहफा देते हैं, कोई चीज़ किसी के लिए लेकर जाते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे ये तो उसकी मर्जी है ना, आप नहीं ठूंस सकते किसी पे नहीं तुमने ज़रूरी लेना। अल्लाह ताला के ऊपर भी हम ये जो काम कर रहे हैं ना, हम ये थोप नहीं सकते कि बस अब उसने ज़रूरी एक्सेप्ट करने, इसीलिए हम दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला कबूल कर लेना इनको। और एक बुजुर्ग थे तो वो अपने लिए दुआ किया करते थे, या अल्लाह मेरे हज को मेरे आमाल नामे में कायम रखना, इसलिए कि आमाल जाया हो जाते हैं, कहीं रियाकारी से, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं एहसान जिताने से भी जाया हो जाते हैं। एहसान जिताना भी ऐसी चीज है कि एक दिन इंसान का दिमाग में आया, किसी से नेकी की भी थी और उससे कोई नापसंदीदा रवैया उससे मिला, तो अब इतना गुस्सा आया, इतना अफसोस हुआ कि इसके साथ तो मैंने ये किया था और इसने मेरे साथ ये किया। फोन उठाया और उसको तड़ तड़ सुना दी, याद नहीं है तो फलाने वक्त में मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, याद है फलाने वक्त में तुम्हारे साथ ये किया था, भूल गई हो सारा कुछ, तो सारी नेकी गारत। तो हम खुद ही इस दुनिया में बाज दफा ऐसे अमल करते हैं कि नेकियां जाया हो जाती। शिर्क, रियाकारी और तकब्बुर और ये सब इसके अंदर शामिल है। तो इन्होंने भी ऐसे काम किए हैं तो अल्लाह ने जाया कर दिया। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता किसी पे, यानी कि अल्लाह ताला को बस शौक हुआ तो किसी का भी नहीं, नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, ऐसी बात नहीं। इंसान खुद कोई ऐसे काम करता है कि अल्लाह ताला कहते हैं जाओ चले जाओ, तुम्हारे सारे नेकियां भी जाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे ज्यादा खसारे में वही है कि जो यहां पर मेहनत करे, मुशक्कत करे, नेकी करना आसान थोड़ा ही है, ज़ाहिर है उसके लिए मेहनत लगती है ना, नफ्स को भी मारना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कितनी चीजें पीछे छोड़ के आप नेकी का काम करते हैं ना, उसके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अगर वो जाया हो जाए कितना फिर गुस्सा आएगा। सोचे ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे किसी ने पाई पाई जमा करके, पाई पाई जमा की इतने इस दिन के लिए कि मैं घर खरीदूंगी। अब जब सौदा कर लिया, घर का सब कुछ हो गया, तो वापस आके देखा कि पैसों को आग ही लग गई और सारे पैसे जल गए, सब नोट जल गए, एक भी बाकी ना रहा। तब उसको कितना दुख होगा, कितना अफसोस होगा कि मैंने कितनी मेहनत की। अब जब वो दिन आया, वो वक्त आया लेने का, तो उस वक्त ही मेरे पास नहीं। कुरान में इसकी मिसाल भी है, सूरह बकरा में, एक आदमी अमल करता है, उसके पास ऐसी है जैसे बाग है, उसके अंदर हर तरह के समर लगा हुआ है, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी औलाद बड़ी हो जाती है, उस वक्त उसके उस बाग को आग लग जाती है। अब वो खुद भी नहीं, सॉरी, औलाद उसकी छोटी है, अब वो खुद भी नहीं काम करने के काबिल और औलाद भी नहीं काम करने के काबिल, औलाद भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस वक्त उसका क्या हाल होगा। यही उन लोगों का हाल है जो दुनिया में नेकियां करते रहे और फिर उसके बाद अपनी नेकियों को खुद लाइटर पकड़ा और आग लगा दी, जला दिया खुद। तो क्यामत के दिन जाके, अब जब नेकियों की जरूरत है, वहां पे कुछ भी नहीं, सब खुद जला दी। तो नेकियां जल भी जाती हैं, नेकियां जाया भी हो जाती हैं। आपने अगर सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, एकदम आपने बस उतार के ऐसे करने लगी और वो ड्रेन में चली गई, और आपको इतना दुख होता है, ये क्या हुआ। किसी के साथ कभी ऐसा, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसा कभी दुनिया में इस तरह छोटी छोटी चीजों में हो गया हो, तो उसको अंदाजा है कि किस तरह की फिर अफसोस और तकलीफ होती है। लेकिन सोचे उसका हाल जो कयामत के दिन जाके अमालनामा खोले और वहां पे कुछ भी नहीं, क्या हुआ, ये इरेज हो गई, सब सब डिलीट का बतना। आपने एक ईमेल लिखी पूरा, तो अक्सर ये ऐसा चीज हो जाती, पूरी लिख ली, इतनी लंबी कहानी लिखी, इतनी रिसर्च की, एकदम पावर ऑफ हो गई और सारा का सारा जाया हो गया, और आप अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया। तो छोटी छोटी दुनिया में जो मिसालें हैं ना, इनसे हमें पता चलता है कि उस वक्त तकलीफ कितनी होती है। हालांकि ये तो दुनिया की चीजें हैं, सोचें जब इनफिनिट लाइफ सामने हो और अब इसके लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो कितना खतरनाक है। और वो सोच के आया कि मैं तो बहुत सेफ हूं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं, मेरे पास तो काफी अमल है, वो इस जोम में रहा, इस खुश फहमी में रहा, और यहां पे दुनिया में इस चीज की परवाह ही नहीं थी कि अल्लाह नाराज हो रहा है या राजी हो रहा है। उसको अल्लाह की रजा की चाहत नहीं थी, जैसे कि एक होता है, एक इंसान हर वक्त इसके अंदर लगा रहा है कि अल्लाह तो किस में राजी है, मैं वो काम करूं, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए, वो तलाश में रहता है। उसने इस चीज की फिक्र नहीं की, इसकी परवाह नहीं की, डिडंट केयर, अल्लाह राजी हो नहीं हो, नहीं हो, कभी सोचा ही नहीं इन चीजों को, तो अमाल जाया होगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। अम हसिबल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन, या समझते हैं वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, कौन सा मर्ज, अगेन निफाक का, अन लन युख़रिजल्लाहु अदग़ानहुम, कि नहीं, अल्लाह निकालेगा उनके दिलों के कीने, उनके दिलों के खोट, उनके अंदर जो बोग्ज हैं, जो दिल में छुपाई हुई बातें हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरतें हैं, दीन के अहकामात के खिलाफ नापसंदीदगियां हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो बातें हैं, क्या अल्लाह निकालेगा नहीं उनके दिलों से इन बातों को? अल्लाह जाहिर नहीं करेगा? असल में क्या हुआ था, शुरू शुरू में मुनाफिकीन बहुत डरते थे कि कहीं हमारी बातें जाहिर ना हो जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब कुछ भी आयतें नहीं उतरी तो वो नडर हो गए और उन्होंने कहा कि अब नहीं कुछ होगा हमें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो समझते हैं अल्लाह ताला कभी इनको जाहिर ही नहीं करेगा, कभी इनके दिलों के हालात को सामने ही नहीं लेकर आएगा? ऐसा जरूर होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही ऐसे वाकया हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया, तुम में मुनाफिकीन हैं, सो मैं जिसका नाम लूँ वो खड़ा हो जाए। फिर फरमाया, ए फलां खड़े हो जाओ, ए फलां खड़े हो जाओ, फलां खड़े हो जाए, हत्ता कि आपने 36 लोगों का नाम लिया था। फिर फरमाया, तुम में मुनाफिकीन है सो अल्लाह से डरो। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी के भी जो छुपी हुई चीजें हैं दिल की वो बाहर निकाल दे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस बारे में फरमाया कि जो शख्स भी छुप के कोई काम करता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे के आसार और उसकी जुबान की लग्जिशों से उस काम को जाहिर फरमा देता है। यानी कोई उसके मुंह से बात निकल आएगी या उसके चेहरे के आसार बता देंगे कि इसने कोई छुप के काम किया। देखा ना आपने, जब कोई नेकी करता है तब भी उसका चेहरा बताना शुरू कर देता है, कोई बुराई करता है, कोई छुप छुप के कर रहा है, उसके चेहरे पे ऐसी लानत पड़ जाती है, ऐसी फिटकार होती है, देख के भी इंसान कहता है कि पता नहीं अच्छा भला आदमी नहीं लगता। तो चेहरों पर आ जाती हैं ये चीजें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये समझते हैं कि इनके दिलों की बातें अल्लाह ताला जाहिर नहीं करेगा? अब देखें, कुछ के तो हालात अल्लाह ताला ने दुनिया में जाहिर कर दिए, सब के लेकिन नहीं किए, आखिरत में सब के ही जाहिर हो जाएंगे। इधर दिलों में इस्लाम कितना पसंद है, इस्लाम के अहकामात हमें कितने पसंद है, उनके लिए कितनी एक्सेप्टेंस है हमारे दिलों में, हम जाहिर क्या करते हैं और हमारे बातिन में क्या है, ये तो आखिरत में सबके सामने जाहिर हो जाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो विजात सुदूर है, जो दिलों के अंदर के भेद है, वो अल्लाह ताला निकाल के ले आएगा उस दिन। तो उस दिन तो कोई भी छुप के नहीं रह सकता, इसी तरह इनको भी बता दिया गया, क्योंकि दुनिया वो जगह नहीं है जिसमें हर चीज जाहिर हो जाए, आखरत वो जगह है। इसलिए अल्लाह ताला ने सबका नहीं जाहिर किया, वरना वो चाहता तो सबका जाहिर कर देता। वलाउ नशाओ, ये देखिए आगे बात आ रही है, अगर हम चाहें लअरैना कहूं, अलबत्ता दिखा दें हम किसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कौन दिखा दें, वो मुनाफिकीन, फला आरफता हूं, फिर अलबत्ता पहचान लो तुम उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान भी हम करा दें, भी सीमा हूं इनकी निशानियों से, उनके चेहरों से, अगर हम चाहें तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दें ये मुनाफिकीन के कौन कौन मुनाफिक है। कुछ दिखाए गए थे, सब नहीं दिखाए गए थे, और ऐसी निशानियां बता दें कि आप इनके चेहरों से ही पहचान लें। और कुछ का तो आगे भी आ रहा है, वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, और अलबत्ता तुम जरूर पहचान लोगे उनको इनकी बातों से, इनके बातों के स्टाइल से ही पहचान लोगे। क्योंकि देखें, एक बंदा जो सच्चा होता है ना, उसकी बात भी होती है, और एक जो फेक कर रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है, चलो एक दिन ना समझ आएगी, दूसरे दिन ना समझ आएगी, लेकिन बातों में कोई हकीकत नहीं है, बस चापलूसियां हैं, तारीफें हैं आपकी, वक्त आने पे कोई नजर ही नहीं आते, तो क्या बहुत देर तक तो आप बेवकूफ नहीं बनते ना? आपको एक दिन पता चल जाता है, आप कहते हैं कि ये मेरा सच्चा मुखलिस दोस्त नहीं है, ये फलाम वक्त में देखो था ही नहीं, आप कहें या ना कहें लेकिन आपको पता जरूर चल जाता है ये खुशामदी किस्म के लोग हैं, ये जेन्युइन नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पहचान सकते थे उनको, उनके उसलूब से, उनकी बातों के स्टाइल से, वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं, जब इस्लाम के ऊपर कोई बात आती है तो फिर उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर क्या करते हैं, बातें क्या करते थे, अमल क्या है। तो ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी पहचानना, हम जैसे लोग भी पहचान लेते हैं लोगों को वक्त आने के ऊपर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के तो क्या कहने। वल्लाहु यालमु आमालकुम, और अल्लाह जानता है तुम्हारे आमाल को, अल्लाह को पता है कि कौन कैसा है, और सबके आमाल को, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो लोग सच्चे हैं पक्के हैं उनको भी जानता है, और कौन लोग हैं जिनमें मुनाफ़त है, वो बहाने ले लेके आते हैं, उनका भी उसको इल्म है। वला नबलू वन्नकुम, और अलबत्ता जरूर आजमाएंगे हम तुमको। कितनी बार ये बात आ चुकी है ना कुरान में, हम आजमाएंगे, हम टेस्ट लेंगे, हम इम्तिहान लेंगे। कब तक? हत्ता नालमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, यहां तक कि हम जान लें जो मुजाहिद हैं तुम में से और जो सब्र करने वाले हैं। वह नबलुआ अखबारकुम, और हम आजमाएं तुम्हारी खबरों को, तुम्हारे हालात को। अब इसके अंदर क्या बात है, कब तक आजमाइश होगी? जब तक हम जान ना लें। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं वल्लाहु यालमु आमालकुम, अल्लाह जानता है आमाल को। फिर यहां पे कहा गया हम जान लें, जान लें से मतलब यहां पे ही है, यानी अल्लाह ताला जाहिर कर दे, उस बंदे को खुद भी पता चल जाता है और उसका जाहिर हो जाता है जो उसका अंदर होता है। आप देखिए ना, आम हालात में तो सब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत दावे करते हैं, हम ऐसे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम, आप हमें कोई काम बता के देखें, बस काम कहें हमें, फिर आप काम कह देते हैं तो उसके बाद उनका पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, ऐसे होता है ना। आप देखते हैं कोई आपको इतनी प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, उसके बाद आप एक दिन आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है और आप उसको कॉल करते हैं तो वो मिलता ही नहीं, उसको पता भी है लेकिन वो नहीं आता। अल्लाह ताला के दीन के लिए भी अल्लाह ताला ने जेन्युइन लोगों को जन्नत में डालना है, जो सच्चे हैं, जो खरे हैं ईमान में, जो ईमान का दावा करें तो वाकई ईमान उनके अंदर है। ये नहीं कि सिर्फ बातें हैं, बातें तो सब ही अच्छी अच्छी कर लेते हैं, बातें करने का क्या मुश्किल है। मैं यहाँ पे बैठ के जितनी भी बातें करती रहूं इसका मतलब ये थोड़ी कि अमल भी वैसा ही कर लूं। अमल किस वक्त पता चलेगा? जब मेरा इम्तिहान होगा। इसलिए अल्लाह ताला इम्तिहान में डालते हैं, अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशंस लेकर आते हैं, ऐसे हालात बना देते हैं इंसान की जिंदगी में। हम सोचते हैं ना ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं हमारे ऊपर, क्यों ये इम्तिहान में हम पड़े हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखना है ना अभी सब्र किसके अंदर है, कौन इस्लाम पे चलता रहता है। आप देखें दुनिया में इस वक्त इस्लाम के ऊपर बड़ी ऐसे हालात हैं कि कोई कोई बहुत यानी अच्छे फेवरेबल नहीं है। दुनिया में हर जगह बेइज्जतियां हैं, जिल्लत है, उनको कैसा समझा जाता है, कैसे लुक डाउन किया जाता है। अब ये हालात भी लोगों के लिए इम्तिहान है, सिर्फ हमारी पर्सनल सिचुएशंस ही नहीं, ये दुनिया के जो हालात बने हुए ना ये हमारे इम्तिहान के लिए हैं, कि कौन है जो साबित कदम रहता, सब्र करने वाला कौन है जो साबित कदम रहे, जो चलता रहे तब भी, मुजाहिद कौन है जो इसके अंदर मेहनत करने वाला है, अटमोस्ट स्ट्रगल ये होती है जोहद, कौन है जो स्ट्रगल करने वाला है, कौन है जो चलता रहने वाला है, और कौन है जो छोड़ के भागने वाला है। अब सिर्फ मुंह के दावों पे जन्नत नहीं मिल जानी, जन्नत इस पे मिलनी है जब यहां पे हम प्रूव करेंगे कि वाकई हम सच्चे हैं, हम खरे हैं, हम में खोट नहीं है, हम प्योर हैं, हम जेन्युइन लोग हैं, तब जन्नत मिलेगी। हम पता नहीं सोचे बैठे हुए कि कलमा पढ़ लेने से ही इतने हमें सर्टिफिकेट मिल गए जन्नत के, ऐसे नहीं है बातें। कुरान बार बार कहता है हम आजमाएंगे तुम्हें, हम आजमाएंगे तुम्हें, अब आजमाइश आती है हमें पता ही नहीं चलता, हम आजमाइशों में फिर फेल हो जाते हैं। अल्लाह ताला देख रहा होता है तुम्हारी खबरों से, तुम्हारे हालात से भी तुम्हें आजमाएंगे, हालात की तुम्हारी खूब खूब छांटी करेंगे, यहां तक कि पाक और नापाक अलग अलग हो जाए, कौन मुनाफिक है और कौन सच्चा मोमिन है। जरूरी नहीं कोई कुफर ही करे, किस में मुनाफकत है ये भी पता चल जाएगा, किसके दावे झूठे थे ये भी पता चल जाएगा, कौन बस ऊपर ऊपर को मुसलमान हुआ हुआ था अंदर से कुछ नहीं था ये भी पता चल जाएगा, कौन बस बॉर्न मुस्लिम था ईमान तो उसके अंदर था ही नहीं, ये भी सामने आ जाएगा। तो तुम्हारे हालात से अल्लाह ने जरूर ये बात जाहिर कर देनी है। तो इंसान अपने आप को जो दिखा रहा होता है अगर वो अंदर वैसा नहीं है तो फिर वो जाहिर हो जाएगा एक दिन। आप देखते हैं जब कभी फिर कुछ सख्त सिचुएशंस कुछ लोगों पर आती हैं तो उसके बाद वो अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, अल्लाह के खिलाफ शिकायतें करने लगते हैं और कहते हैं क्यों उसने मुझे डाला इसके अंदर। तो इम्तिहान हो गया ना, आम हालात होते इम्तिहान ये ना आता तो छुपी रहती ये चीज़ अंदर, मगर ये चीज़ अंदर थी, अल्लाह ने उसको निकाल के बाहर लाना था। ताकि इसी बेस पे फिर क़यामत के दिन ये होगा ना कि देखो तुमने ये कहा था। तकदीर पे ईमान फिर कहाँ गया, अल्लाह पे ईमान कहाँ गया, उसकी हिकमतों पे ईमान कहाँ गया, उसका हर फैसला खैर है इस पे ईमान कहाँ गया। तो ये तो अल्लाह ताला दिखा देगा और ये बार बार होगा, ये बार बार होगा, लाजमन होगा। देखें दो इसके अंदर ताकीदें आ गई, अलबत्ता भी और ज़रूर भी, ला भी और नून मुशद्दद भी, ये तो होगा ही होगा। फिर अब इन इम्तिहानों में हम क्या करते हैं, उनका भी इम्तिहान हुआ था और उन्होंने इम्तिहानों में किस तरह से साबित कदमी दिखाई, हमारा भी हो रहा है और हमने इस बात को समझना है कि ये हमारे इम्तिहान है। इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वह सद्दू अन सबीलिल्लाह, और फिर उनकी अगेन बात आ गई, रोका अल्लाह के रास्ते से, खुद भी रुके दूसरों को भी रोका, इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो गए, लोगों तक सच्ची बात नहीं पहुंचने दी, अपनी अपनी जो टैलेंट्स थे, अपना जो इल्म था, वो लोगों को शकूक शुभात में डालने में लगा दिया, कन्फ्यूज किया लोगों को, वो कुछ समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता, कोई समझ नहीं आती ये करें कि ये करें, दूसरे को भी कंफ्यूज कर दिया, तुम्हें क्या पता क्या चीज़ है कि जो प्रिजर्व हुई, कितनी इसमें चीज़ें शामिल कर दी हो, तुम्हें क्या पता, नहीं नहीं ये तो इंटरप्रिटेशंस ही नहीं किए हैं मौलवियों की और कुछ नहीं, क्या है कन्फ्यूजन्स। वशाक रसूल मिम्बादी माता बैना लहुमुल हुदा, और उन्होंने मुखालफत की रसूल की इसके बाद की हिदायत वाजे हो गई, समझ भी आ गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बाद भी रसूल के रास्ते से हटे, रसूल की मुखालफत में खड़े हो गए। और मुनाफिकीन का ये तरीका था, उनके लिए ये था कि रसूल जो बात कह रहे हैं वो बात सही नहीं है, इसलिए कि वो उनको क्या पता, हमने बस ठीक है हम कुरान मानेंगे, हमने रसूल की बात को कैसे मान सकते हैं, वो तो एक इंसान ही है ना, वो तो ऐसी बात, उनकी बात पूरी की पूरी मानने की जरूरत है ही नहीं है, ये तो अपनी तरफ से ये एडवेंचर्स कर रहे हैं। तो उन लोगों ने, ये मुनाफिकीन की बात है, काफर व सद्दू अन सबीलिल्लाह, और यहूद की भी बात इसमें आ जाती है, इसलिए क्योंकि यहूद भी मदीना में थे, उन्होंने भी कुफर किया, अल्लाह के रास्ते से रुका, रसूल की बात के अलावा बात की, जबकि उनके ऊपर वाजे हो गई थी कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये बात वाजे हो गई थी। आप देखें रोकना, ये भी रोकना होता है कि हम कहें हम मुसलमान हैं लेकिन हर किस्म के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लोग तो यही सोचेंगे ये मुसलमानों के करते हैं तो इसका मतलब ये यही होता है इस्लाम, वो इस्लाम से रुक जाएंगे। जब वो हमारा अमल देखते हैं कि हमारा अमल इतना बुरा है तो वो कहते हैं ये इस्लाम है, छोड़ो ऐसे इस्लाम को। ये भी रोकना है जो हम अनकॉन्शियसली बाज दफा रोकते हैं, हमारे बद आमाल लोगों को दीन से दूर ले जाते हैं। तो जिन्होंने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया लन यदुरुल्लाह शैआ, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे, वसयुहबितु आमालहुम, उनके आमाल भी जाया। आप देख रहे हैं आप कितनी दफा ये आ रहा है, उनके आमाल भी जाया, अब लिस्ट पता चल रही है आपको, रसूल से अलग रास्ता इख्तियार करना, रसूल की बात कुछ और है और अपनी बात उसमें ले आना, या अपने कहना कि नहीं हम तो फलां की बात मानेंगे, रसूल की, रसूल का रास्ता कुछ भी है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रसूल की हदीस कुछ भी है हमें इससे कोई नहीं। ये भी क्या है, आपको हिदायत वाजे है, कुरान आपके सामने है, हदीस की बात वाजे है, उसके अलावा फट के कहीं और ही चल पड़े, ان کے بھی اعمال ضائع ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, اس لیے کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے اندر کیا آ گیا, قرآن و حدیث دونوں آ گئے نا, دونوں آ گئے. وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, حدیث بعد میں لکھی گئی حدیث, وہ اطیعوا الرسول پہ کیسے عمل کریں گے؟ صرف یہ کوسچن ایک ان سے کہیں پوچھ کے آئے ہیں کہ وہ حدیث پہ اگر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اطیعوا الرسول کیسے وہ کریں گے؟ قرآن تو سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے, رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ان کی سنت, ان کے طریقے, ان کی بات, یہ سب ہم تک جو پہنچی ہے اس پہ عمل کرنا, وہ کیسے اطاعت کریں گے؟ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور دیاد رکھنا اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا, یعنی اطاعت کرو اللہ رسول کی ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اطاعت اللہ کی اطاعت, اور اس میں بھی کمپلیٹ اطاعت, یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سن لیا تھوڑا مان لیا باقی چھوڑ دو. رسول کی اطاعت بھی اتنی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے, اسی طرح رسول کی اطاعت ضروری ہے. رسول کی اطاعت ہی منافقین کو بھاری لگتی تھی, سب سے بھاری لگتی تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں وہاں جہاد پہ چلیں, آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو, آج یہ کہہ رہے ہیں مال لے کر آ جاؤ, آج یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو, یہ نہیں ہم سے ہوتا. اور آج بھی رسول کی اطاعت بھاری ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے, پر قرآن میں دکھا دو نا ہمیں, قرآن میں نہیں ہے تو آگے, قرآن کے آگے بھی ایک چیز ہے اور وہ حدیث ہے. ہم دونوں کی اطاعت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اس سے آگے نہیں. یہاں پہ دیکھیں دونوں کا کہا گیا, اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نافرمانی کرتے ہیں, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے نبی کیا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑیں گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. پھر کافر یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ کافر ان کو کہا گیا جو اطاعت اللہ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت سے نکل جائیں, وہ کافر کہے گئے. یہاں ہمارے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ان کو نہ ان کی اطاعت کی جائے, یہ الگ بات ہے. ہاں انسان سے کوئی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا مجھے نہیں پرواہ ہے, یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی اطاعت سے انسان نکل جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی, اور جو اطاعت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. کون وہ لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اور نیک لوگوں کے ساتھ, جن کا ہم مانگتے ہیں نا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ انعم اللہ علیہم کون ہے؟ نبی, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ ان کے ساتھ کر دے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فلانا بھی تو ایسے کرتا ہے, فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے, وہ دیکھو یہ کام کرتا کرتا مر گیا تو کیا فرق پڑا, اس کے جنازے پہ تو اتنے لوگ آئے تھے, اس کو تو لوگ اتنا اچھا سمجھتے ہیں, اس کی تو اتنی تعریفیں کرتے تھے. نہیں, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ہوگے جو وی آئی پیز ہیں, ورنہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو کبھی انسان ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں کے اوپر نہ جمع رہے, کبھی نہ ڈھٹائی کے ساتھ جمع رہے. کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس پہ فوراً توبہ کریں, اور اگر ابھی تک نہیں چھوڑ پائے کسی گناہ کو, بار بار ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر لے کر آ. کسی گناہ کے اوپر یہ نہ سوچیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سب ہی ایسا کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, ثم ماتوا, اور اب آپ کو روکنے کا پتہ چل گیا نا کتنے کتنے طریقے ہوتے ہیں روکنے کے. کوئی منہ سے کھڑا ہو کے کہے میں آپ کو روک رہی ہوں اللہ کے راستے سے, ایسے کوئی نہیں کہتا. वही होगा शाजो नादर, कोई अबू लहा भी होगा जो ऐसा कहेगा, मगर अदरवाइज कोई आम लोग इस तरह से मुंह खोल के कह नहीं देते। तरीके होते हैं रोकने के, उन तरीकों को इन डेप्थ जाने। तो जो लोग कुफर करते हैं और खुद भी रुके, मैंने आपको बताया था सद्दू के अंदर खुद भी रुकना है और दूसरों को भी, इतना सता देना कि वो अमल ही ना कर सके दीन पर, ये भी तो रोकना है। इतना सताना उसको कि तुमने बस नहीं करना। मुझे किसी ने बताया पिछले दिनों कि कोई स्टूडेंट थी, तो उनके खामिद ने उनको कहा कि ठीक है क्लास लेती हो तो ले लो, जितनी भी कुरान की क्लास लेनी है तुम, उसमें कोई नहीं मुझे मसला, लेकिन इसके ऊपर अमल करने का मत सोचना कि कुरान को घर के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और टोकना क्या होता है? वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, सुम्मा मातू, फिर वो मर गए, वहुम कुफार, इस हाल में कि वो काफिर हैं, वल्लन यग़फिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको माफ हरगिज़ नहीं करेगा। इसके ऊपर हमारी इतनी प्रॉब्लम आज हो गई है कि हाय किसी को काफिर भी ना कहो। ओ भाई, जो अपने आप को मुंह से कह रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, तो वो हमारे नजदीक तो जो मुसलमान नहीं वो काफिर ही है। कोई मुंह से कह रहा है मैं बुतों की पूजा करता हूं, कोई मुंह से कह रहा है कि मैं कुफर करता हूं, कोई मुंह से, तो उसको भी कहना नहीं नहीं इसको काफिर ना कहो। अभी हमारे यहाँ पे मैंने कुछ अरसा पहले जो एक फिल्म एक्ट्रेस की मौत हो गई, अब किसी ने मुझे बताया कि इतना सोशल मीडिया पे ये चीज चली हुई है कि नहीं उसको काफिर ना कहो, उसको ये ना कहो, उसको ना वो ऐसे कहो, किसी स्पेसिफिक बंदे को, जबकि ये पता है कि कोई कुफर के ऊपर है तो उसको काफिर तो कह सकते हैं, और कुफर पे ही उसकी मौत आई हो तो उसको काफिर तो कह सकते हैं, और काफिर का अंजाम क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया दिया, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। हमें अभी तक यही रवादारी हमारी खत्म नहीं होती, हाय नहीं नहीं बस कहना नहीं है, नहीं बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी। कुफर जो होता है ना वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। इधर हमें यह समझना चाहिए कि हम हक के साथ हैं या बातिल के साथ, दोनों चीजें अच्छी नहीं हो सकती, एक चीज इनमें से सही है, हम किसको सही समझते हैं? तो हम ये तावीलें, लोग नाराज हो जाते हैं, हाँ आपने ये कह दिया कि काफिर नहीं जन्नत में जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे क्या? आप जो मुसलमान हैं ये आप लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, ये मुसलमान ही कह रहे हैं, कुछ को काफिर नहीं कह रहा। मुसलमानों को ही परेशानी बहुत ज्यादा है, काफरों की तो इतनी हमें परेशानी कि हम उसमें घुल घुल जा रहे हैं, अपनी को फिक्र है नहीं, क्योंकि अपने हम सब ने सोचा था कि हम जन्नती हैं। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि हमें ये पता ही नहीं कि आखिरत की मंजिलें कितनी एक मुश्किल है। हमें यही नहीं, हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो हम नमाज रोज़ा ये क्लास ये कुरान का पढ़ना ये भी वाकई वो स्टैंडर्ड का है कि हमें जन्नत तक ले जाए या नहीं, हमारा ईमान भी स्टैंडर्ड का है या नहीं, हमें तो अपना भी नहीं पता, हम कहाँ होंगे उस दिन, हमें नहीं पता ये हमारे जो आमाल हम कर रहे हैं इनका क्या वजन होगा उस दिन, हमें नहीं पता कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे उस दिन तक, हमें कुछ भी नहीं पता अपना, स्टिल हमें दूसरों की फिक्र ज्यादा है और अपनी कोई फिक्र नहीं है। जिनका अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि काफिर को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, शिर्क को अल्लाह ने नहीं बख्शना, हम उनकी ताईद करते हैं कि नहीं कोई मुशरिक भी मर जाए तो कोई बात नहीं, वो भी आपको क्या पता वो जन्नत के अंदर ही हो ना हो, और आपको क्या पता उनके इतने अच्छे नेक काम है, आप लोग ही हैं कोई जन्नती? कब हम कहते हैं कि हम जन्नती हैं? जो मुसलमान है हम कहते हैं बस अल्लाह ताला की रहमत ही है जो हम बख्शे जा सकते हैं, कोई अपने बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उनके बारे में हम जरूर कहते हैं कि वो जरूर जन्नती हैं। और ये एक दफा कोई नाराज हो गई कि जो है आप लोग ये क्यों कहते हैं कि काफिर जहन्नुम में जाएगा और मुसलमान जन्नत में जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के तो आज अमल जो है काफिरों से भी बदतर है। समझ ही नहीं है हमें कि शिर्क क्या चीज है, हमें ये समझ ही नहीं कि अल्लाह का इनकार करना कितनी बुरी चीज है, उससे ज्यादा बुरा कोई अमल ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि नेकी भी तब कबूल होती जब ईमान होता है, हमें इन चीजों का शऊर ही नहीं है आज मुसलमान को, और हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि आपने कह कैसे दिया कि कोई काफिर जहन्नुम में जाएगा। किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो सही है कि कुफर जो है सरीहन जो काफिर कुफर कर रहे हैं और उसी के अंदर उनकी मौत आई है, वो उनकी बख्शिश नहीं है। उनके लिए आप दुआ भी नहीं कर सकते बख्शिश की। फला तहिनु व तदउ इला सलम, ना तुम सुस्ती दिखाओ और ना तुम बुलाओ सुलह की तरफ। ये कब की बात है? यानी जिस वक्त के मुसलमान ये सोच रहे थे कि हम हमारे पास तो ना हथियार है, ना हमारे पास कोई ऐसी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, ना हमारे पास कोई इतने रिसोर्सेज हैं, तो हम कैसे लड़ेंगे, कैसे हमारा सब होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम सुस्ती ना करो और ना तुम नीचे होके सुलह की तरफ बुलाओ। जब इंसान नीचा होके करता है तो फिर उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं रहती। सुलह उसी वक्त सुलह की करी जा सकती है जब गलबा हो। सुलह हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब सुलह की थी जिस वक्त टाइम बाय करना था कि हम अपनी तैयारी कर लें। ये नहीं कि हमेशा के लिए बस सुबह सुलह कर दी, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। नहीं, अपनी तैयारी के लिए वक्त चाहिए था। लेकिन ऐसे गिर के सुलह ना कर दो कि उसके बाद आप आपके कोई रो भी दूसरे पे ना रहे। वअंतुमुल आलऊन, तुम फिक्र ना करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। वल्लाहु माकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया कि तुम्हें नीचे नहीं होने की जरूरत, तुम अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करो, तुम सुस्ती ना करो, तुम ही गालिब आओगे क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलई यतीरकुम आमालकुम, और अल्लाह जाया नहीं, कम नहीं करेगा, कमी नहीं, क्योंकि आगे पिछले पीछे सारी बातें हो रही ना अमाल के जाया होने की, तो तुम्हारे अमाल को अल्लाह ताला कम नहीं करेगा। अल्लाह ताला पूरा पूरा तुम्हारे अमाल का बदला देगा जो कुर्बानी तुम इस दीन की खातिर करोगे। फिर फरमा दिया इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन वलहव, बेशक दुनिया की जो जिंदगी है वो खेल है और तमाशा है। ये लाइब और लहव की बात जो है पहले भी बहुत दफा कुरान करीम में आ चुकी है कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, लाइब और लहव है इस तरह। तो ये लाइब और लहव क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। हम लहव व लाभ कहते हैं ना, यानी ऐसी काम को कहते हैं जिसका कोई फायदा ना हो, ना फ्यूचर में ना इस वक्त में कोई फायदा हो। अगर उस काम में मशगूलियत की वजह से इंसान के दूसरे जरूरी कामों में या इबादात में गफलत हो रही है, हरज गफलत नहीं हो रही या हरज नहीं हो रहा तो वो लाइब है, और अगर इनमें हरज हो रहा है जरूरी कामों में या इबादात में तो फिर लहव है। इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लव के आलात कहा जाता है ना। इंसान के जरूरी काम रह जाते हैं, इबादत रह जाती हैं, चीजें रहती हैं, उसमें इंसान उनमें इतना महव हो जाता है, और दूसरे काम के अगर उसमें मशगूलियत होने की वजह से इंसान के दूसरे कामों में गफलत ना हो फिर भी वो लायब है, उनको उनका कोई फायदा नहीं है ना, जिन चीजों का कोई फायदा नहीं है। दुनिया की जिंदगी को इस तरह से बताया गया कि इंसान के लिए ऐसे ही है जिसको हमने कहा कि खेल, इसीलिए उसको खेल कहा गया क्योंकि खेल का कोई फायदा नहीं होता। खेल खेल के क्या फायदा है? देखो एक टीम जीत जाती है एक हार जाती, फिर क्या क्या उसका फायदा मिला? जितनी देर पूरा दिन लगा के खेलते हैं क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है उसका, कुछ आउटकम नहीं है उसका। देखने वाले सारा दिन अपना जाया करते हैं, क्या मिला उनको? अल्लाह ताला ने ये बार बार क्यों दुनिया की जिंदगी की हकीकत इस तरह बताई है? इसलिए कि जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम अपनी जिंदगी को फिक्स कर लेंगे, फिर हमारी अप्रोच उसके मुताबिक होगी, मेहनत उसके मुताबिक होगी, टाइम उसके मुताबिक लगाएंगे। जब पता चलेगा ये दुनिया लायब और लहव है, इससे जिससे सिर्फ थोड़ी देर की लज्जत मिल सकती है लेकिन आगे कुछ फायदा नहीं है, इसके अंदर जितनी हम टाइम लगा रहे हैं, इसके अंदर जितनी मशगूलियत हम हरी है, भाग दौड़ है, इस मेहनत है, इसका कोई आगे फायदा नहीं है, तो फिर इंसान उसी के मुताबिक लगाएगा ना अपना वक्त, उसी के मुताबिक मेहनत करेगा, उसी के मुताबिक अपना सलाहियत उसमें देगा, उसी के मुताबिक अपने दिन रात लगाएगा। जब इंसान को समझ नहीं होती तो बस फिर वो इसी में लगा रहता है। लेकिन देख लें, ये उसी तरह जैसे आप खेल खेलते हैं, खेल खेला, बच्चों ने टॉय से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे लड़ते भी हैं आपस के अंदर, वो एक ही खिलौने को छीनते रहते हैं, और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक रोता भी बहुत है। एंड ऑफ द डे में क्या है, जिसको मिल गया वो जीत गया और जिसको नहीं मिला वो हार गया, वो कुछ भी नहीं है। आप हंसते हैं कि क्या बेवकूफ़ी है बच्चों की, लेकिन वही बेवकूफ़ियाँ हम कर रहे हैं। जब किसी को मिल जाता है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, अपने आप को समझता है मैं बड़ा फातह आलम बन गया, मैं वजीर बन गया, मैं अमीर बन गया, मैं सदर बन गया, मेरे पास इतना पैसा आ गया। ये भी वाकई खिलौने ही हैं, जैसे खेल के खिलौने होते हैं। एक है जो रोता है, हाय मुझे नहीं मिला, उसने मेरे से ये टॉय छीन लिया, वो इतना रो रहा है, वो लेट के पैर मारता है, वो अलकान हो जाता है रो रो के। आपको उसके पर भी हंसी आ रही थी कि क्या बेवकूफ़ी की बात है, क्या पागलपन है, छोड़ो। आप उसको भी समझाते हैं कि आपको समझ आ चुकी है ना कि ये खेल ही है। दुनिया के मामले में हमें ये अभी समझ नहीं आई, इसीलिए जब चीज़ यहाँ पे छिन जाती है तो हम बहुत रोते हैं, हम बड़ा उसका गम करते हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ गई ना, ये खेल तमाशा है, क्या है, टेम्प्रेरी है, ये सब चीज़ें खिलौने हैं यहाँ के, उस दिन फिर हम इतना इतना गम नहीं करेंगे। हाय मेरे पास नहीं है ऐसा घर, हाय मैं उसका चीज़ देख कर आई है, वैसी गाड़ी हमें भी चाहिए थी, हमारे हमें नहीं मिली, ये प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए थी, उसको मिल गई, कितना गम इसका। इसलिए कि समझ ही नहीं आई कि ये दुनिया की ज़िंदगी लायब और लाहब है। और बार बार क्यों अल्लाह ताला बता रहे हैं, एक दफ़ा तो बता दिया पहले, तो फिर बार बार बताने की क्या ज़रूरत है। इसलिए कि ये बात बहुत जल्दी भूल जाती है। दुनिया में इतनी चकाचौंध है ना, इतनी अट्रैक्शन है, इसके हमें अपने अंदर गुम कर लेती है। हम ऐसे इस चीज़ इसकी चीज़ों को देख देख के ऐसी हसरतें करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर हम ठीक होते हैं, फिर उसके बाद हमें हाय काश ये भी मेरे पास होता, हाय कैसा उसको अच्छा मिल गया, हाय कितना उसको तो मज़ा आ रहा होगा, हाय कितनी खुशकिस्मत है वो, क्या बात है उसकी, उसका घर ऐसा, उसके कपड़े ऐसे, उसका जेवर ऐसा, बताया सब लायब और लहाव है। जैसे सुबह को खेलना शुरू करते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे जब वो वर्ल्ड वर्ल्ड कप के कोई भी हो रहा होता है, तो जो एक एंड में एंड उसका ज़रूर अगर आप देखें कभी, एक टीम होती है जो इतना रो रहे होते हैं, अच्छे बड़े बड़े आदमी रो रहे होते हैं, दूसरी टीम होती है उनकी खुशी की ऐसे इंतहा होती है कि जैसे आज पता नहीं इनको जन्नत मिल गई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या अगले दिन या उससे अगले दिन क्या होता है, वो एक भूली बिसरी दास्तान बन जाती है, माजी की एक बात बन जाती है। ऐसे ही पता चलता है, हाँ 10 साल पहले ऐसे हुआ था, 1 साल पहले ऐसे हुआ था, एक जीता था और एक हारा था। ना हारने वाले को कोई गम रह जाता है, ना जीतने वाले की कोई खुशी रह जाती, बस ये इतनी ही थी, इतनी टेम्प्रेरी है। यहाँ की सभी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, थोड़ी देर की हैं, ना खुशियाँ परमानेंट है, ना गम परमानेंट है। ये सब खेल हैं, खिलौने हैं यहाँ के, थोड़ी देर के लिए इंसान इनसे महजूज होता है, जी बहलाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, बसात जो है वो लपेट दी जाएगी, ख़त्म, ओवर, गेम इज़ ओवर। उसके बाद जो रोना है वो भी हमेशा का रोना है, और जिनको खुशियां मिलेंगी वो भी हमेशा की मिलेंगी, यहाँ की तरह नहीं। यहाँ का तो खेल था ना, इस खेल की तो सब चीज़ ही टेम्प्रेरी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल तो सिरून अल हयात दुनिया वाला आखिरत खैर वाबका, तुम दुनिया की ज़िंदगी को फिर भी तरजीह देते रहते हो, आखिरत है बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है, फिर भी हम यहीं की सफाइयाँ, सुथराइयाँ, मेंटेनेंस, यहीं पे एनर्जी लगाते रहते हैं, फिर भी आखिरत के लिए उतना नहीं लगाते जितना लगाना चाहिए। हर दिन आप सोचें, हर दिन हम अपनी आखिरत के करीब हो रहे हैं या दुनिया के, हमने एक सफर शुरू किया हुआ ना, किसके करीब हो रहे हैं, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारी मौत की जगह भी मुकर्रर है, मौत का फरिश्ता भी मुकर्रर है, किसने हमारी रूह कब्ज करनी है, सब डेट टाइम एवरीथिंग लिखा हुआ है, फिर भी हम लाभ और लाभ में पड़े, इतने मशगूल हुए हुए हैं, इतने मसरूफ हैं इसके अंदर कि हमें होश ही नहीं आता। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे एक जगह पे दावा का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन हुई, तो आप सोचें कि जब उनको फ़ोन किए गए तो उनमें से 90% लोगों ने ये कह दिया कि हम मसरूफ इतने हैं, हम जॉब करते हैं, हम इतने मसरूफ हैं ना, हम तो नहीं अब कर सकते। 10% कोई लोग होंगे जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। वो जो 90% थे ना, उन्होंने ये कहा, उनमें से कुछ ने ये कहा, अगर आपने हमें देना ही है तो कोई बहुत ही आसान चीज दें, बहुत ही आसान, जिसमें कुछ भी ना हमें करना पड़े, बस सुनी ले, बस ये इतनी आसान चीज दे दें, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत तुम्हारी बिजी लाइफ है। किसमें बिजी है? खिलौनों में, खेल में, लव में। लव है ही वो चीज जो अपने आप में इतना मशगूल कर लेना इंसान को पता ही ना चले हमारे कितनी ज्यादा हमारी मसरूफियत हो गई है इन्हीं चीजों में ना, पूरा दिन हमारा किधर गुजरता है? टुवर्ड्स आखरत हम अपनी कुछ बना रहे हैं या टुवर्ड्स दुनिया? और उसमें ही मसरूफियत खत्म नहीं हो रही। तो कब तक खेलेंगे इन खिलौनों से? ये दुनिया तो कलील है, हम बता दिया लाभ और लाभ है। वाइन तो मीनू व तत्तको, अगर तुम ईमान ले आते हो, तकवा इख्तियार करते हो, युतिकुम उजूरकुम, वो तुम्हें देगा तुम्हारे अजर, पूरे पूरे अजर देगा तुम्हारे। तुम अगर ईमान लाओगे, तकवा इख्तियार करोगे, तुम्हारे अपने लिए भला है, अल्लाह को नहीं इससे कुछ मिल जाना। वला यस अलकुम अमवालकुम, वो तुमसे सवाल नहीं करता तुम्हारे मालों का, वो तुमसे कोई माल नहीं मांगता कि मुझे पैसे दो, मुझे चाहिए तुम्हारे माल, तुम हलकान हो कमा कमा के। अल्लाह ताला यहां पे दुनिया की हकीकत बयान करके कि ये लहव है, इसमें तुम अपनी आखरत को दाव पे लगा के, उसको भूल के, उससे गाफिल होके यही मसरूफियत में पड़े हुए हो। ये दुनिया की जिंदगी है ही ऐसी, ये ऐसे अपने आप के अंदर मशगूल कर लेती है, उसमें फिर कोई लोग होश से काम लेते हुए वो क्या करें, सच्चा ईमान लेकर आए, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारें, तो अल्लाह ताला उनके अजर उनको देगा, कोई कमी नहीं करेगा। और अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल तो नहीं मांगता, मालों का तो नहीं सवाल करता। जो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया ना कि अपने माल गरीब को दो, फकीर को दो, मिस्कीन को दो, वो भी तुम्हारे ही भाई बंद हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही इंसान है, और उसमें भी तुम्हारी ही भलाई है, राइट? उसमें इंसान की अपनी ही भलाई है ना, दुनियावी भी भलाई है, क्योंकि जब एक माशरे के अंदर हैव और हैव नॉट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, कुछ लोगों के पास सब कुछ है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होता है? लूट मार होती है, डाके होते हैं, चोरियां होती हैं। वो जो जिनके पास नहीं होता, वो इस कदर एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हम इनको चाहे हमें लूट खसूट के लेना पड़े लेंगे, फिर गन पॉइंट्स पे लोग चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, फिर उनसे देखा नहीं जाता कि ये गाड़ियों में बैठते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ो, फिर शर पसंद बन जाते हैं। फिर कोई अमीर अपने आप को महफूज नहीं समझता, वो कहता पता नहीं घर से निकले वापस भी आएंगे कि नहीं, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसके अंदर एहसास महरूमी इतना ज्यादा हो गया कि वो कहता मैं जीने नहीं दूंगा इसको जिसके पास है। तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत जरूरी है। जब तुम दोगे तो वो तुम खुद भी अमन में रहोगे, ये तो दुनिया का फायदा है, और आखरत के फायदे उससे कहीं ज्यादा है। और फिर दुनिया में ये भी फायदा अल्लाह ताला तुम्हें ही लौटा के देगा, और अल्लाह ताला तुमसे लिए तो नहीं रहा, अल्लाह को तो नहीं कोई फायदा। वस अलकुमूहा, अगर वो तुमसे मांग ले, फयुहफिकुम, फिर वो ज्यादती करे मांगने में, यानी तुमसे बहुत ज्यादा मांग ले कि तुम सारा का सारा दे दो या आधा दे दो, तुम्हें कहे अभी तो 2.5% जकात है, तुम्हें कह दे तो 2.5% नहीं 20% दो या उससे ज्यादा दो, तब खालू तुम बुखल करोगे। वयुखरिज अदगानकुम, और निकालेगा वो तुम्हारे बोझ, फिर तुम्हारे अंदर जो है ना ये जो बातें हैं कि हाँ हम तो दीन की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, हम ये लुटा सकते, वो सब निकल आएंगी, तुम्हारे बुखल भी जाहिर हो जाएंगे। फिर तुम कहोगे कि हाँ ये कैसा इस्लाम कैसा दीन है, देखो हमसे इतना हमारे पर तो चट्टी डाल दी। आज ही आप देखें कितनी दुनिया है जो जकात नहीं देती, और कितने हैं जो जकात देते हैं और उसको पर भी इतनी वो उनके दिल तंग होते हैं कि हाय जकात में इतना चला जाएगा, जकात देनी पड़ेगी, जैसे जकात ना हो गई उनके ऊपर कोई यानी टैक्स है जो लगा दिया गया जो उनको बुरा लग रहा है। अब बेशुमार हैं जो नहीं देते, हालांकि अभी कितना है 2.5% है सिर्फ, तब भी नहीं दिया जाता। तो आप सोचें कि अगर इससे ज्यादा होता तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे तो बुखल खुल जाते, तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं ना वो निकल आनी थी कि दिल कितने घुटे हुए हैं, मुट्ठी कैसे बंद होती है तुम्हारी, वो सब चीजें जाहिर हो जानी थी। हा अंतुम हा उलाई, ये तुम हो वो लोग, तो दाऊना ली तुन फिकू, तुम पुकारे जाते हो, तुम बुलाए जाते हो कि तुम खर्च करो, किसमें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फमिनकुम मन यबखल, फिर तुम में से ही हैं जो बुखल करते हैं, यानी तुम में से ही लोगों को ये कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में दो, मगर वो बुखल करता है। अब हम समझते हैं बुखल का मतलब है कंजूसी, नहीं, बखील वो भी है कि अपने ऊपर तो खर्च करने के ऊपर तो कितने भी लुटा देगा, फिर तो नहीं हम देखते कि कितने का पर्स है, कितने के कपड़े हैं, कितने के ब्रांड नेम के ये जूता है। उस वक्त तो बहुत शाह खर्चियों वाले हैं, उस वक्त तो हमारा हाथ खुल जाता है, अपना मेकअप कराना है, अपनी ब्यूटी की कोई चीजें लेनी है, वो सब के लिए। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देना तो फिर तब बखील है, वो है उस बुखल की बात हो रही, ये वो कंजूसी वाला नहीं जो हम समझते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान में सबसे बदतरीन चीज है बेसबरापन, बुखल और हद से ज्यादा बुजदिल होना। ये तीन चीजें हैं जो बदतरीन है इंसान के अंदर, कि एक इंसान में सबर ही ना हो, बेसबरापन हो, नंबर टू बुखल है उसके अंदर, नंबर थ्री हद से ज्यादा बुजदिल ही है। कई लोग इतने बुजदिल होते हैं कि बस उनको हर वक्त ये डर रहता है हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाय, हमें मुनाफिकीन की भी एक सिफत थी बुजदिली, इसीलिए तो दोनों जगह अच्छा रहना चाहते थे ना, अंदर बुजदिली होती है ना, इसीलिए हर जगह बस अच्छे अच्छे बन के रहो, इनको भी राजी करो, उनको भी राजी करो, क्या जरूरत है इसकी। वो ये देखें, जब हद से ज्यादा बुजदिल हो जाता ना इंसान, तो फिर इस्लाम पे भी अमल नहीं कर सकता। कहीं किसी को पता ना चल जाए मैं मुसलमान हूं, कहीं मुझे कुछ नुकसान ना दे दे, कहीं मुझे जो ये ना, मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मुझे कुछ कह ना दे कोई, ये भी हद से ज्यादा बुजदिल, ये भी बदतरीन खसलत है जो एक इंसान में होती। तो बुखल की वजह से इंसान जो बखील होता है उसके लिए, उसके बारे में जो वईद है कि जो दुनिया की मुश्किलात भी उस पर आती हैं, हदीस में है कि जब लोग दिरहम और दीनार में बुखल करने लगेंगे, उम्दा और बढ़िया चीजें खरीदने लगेंगे, यानी अल्लाह के रास्ते में देने के लिए उनके हाथ रुकेंगे, और जो उम्दा और बढ़िया चीजें हैं, कोई ब्रांड नेम है, कोई बड़ी बड़ी चीजें, उनको खरीदने लगेंगे, गाय की दुमों की पैरवी करने लगेंगे, और जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देंगे, तो अल्लाह उन पर मसाइब नाजिल करेगा, और उस वक्त तक उनको दूर नहीं करेगा जब तक लोग दीन की तरफ वापस ना आ जाएं। अल्लाहु अकबर। फिर मुसीबतें नाजिल होती हैं जब इस तरह बुखल होता है। इसीलिए आज जिनके पास बहुत माल है वो भी चैन की नींद नहीं सो पाते, उनको भी हर वक्त खौफ ही रहता है, उनके ऊपर भी मुसीबत है। वमई यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जिसने बुखल किया उसने अपने नफ्स से बुखल किया। कैसे नफ्स से बुखल किया? जिसने बुखल किया उसने अपने नफ्स से कैसे बुखल किया? उसने तो दूसरे को नहीं दिया, तो अपने आप से बुखल करना क्या हुआ? अपने आप से बुखल करना ये है कि अपने आप को फायदा पहुंचाना था ना, नेकी मिलनी थी उसको, अजर मिलना था उसको, उसने अपने आप को ही उससे महरूम कर दिया, अपने आप से बुखल किया, यानी अजर से महरूम करके खुद को खुद के साथ बुखल किया। तो जब कोई किसी को नहीं देता, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, हालांकि अल्लाह को नहीं मिल रहा, वो लोगों को ही, अपने ही माशरे में लोगों को जो पिसे हुए हैं उन तक ही पहुंच रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी फरमाया कि अल्लाह को कर्ज देना है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की खातिर जो खर्च करना है वो अल्लाह को कर्ज देना है, सिर्फ उस काम को ऑनर देने के लिए, वरना अल्लाह को उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे वो हदीस आती है कि तुम में सब लोग जिन और इंस और अव्वल से आखिर तक जितने भी हैं, बूढ़े जवान बच्चे औरतें मर्द, सब सबसे नाफरमान शख्स की तरह हो जाएं, उसके दिल की तरह जाएं, तब भी अल्लाह ताला को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता उसकी बादशाहत में। तो अल्लाह ताला को क्या कि तुम अल्लाह के दीन की खातिर कर रहे हैं, तो पता नहीं हम कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं और कितने अल्लाह को फायदा दे रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसी कोई नहीं बात। जब तुम बुखल करते हो तो अपने साथ ही बुखल करते, अपने आप को तुमने नेकी से महरूम कर दिया। वहां पे 70 गुना और उससे भी ज्यादा मिल सकता था, उससे तुमने अपने आप को महरूम कर दिया, तुमने अपना ही फायदा छोड़ दिया ना, तो बोखल किसके साथ हुआ? तुम सोचते इसको नहीं मैंने दिया, इसका नुकसान किया, नहीं अपना किया। वल्लाहु गनीयु, वल्लाहुल गनीयु व अंतुमुल फकरा, अल्लाह गनी है, बेनियाज है, वो तो खुद देने वाला है, वो तो खुद देने वाला है, वो खर्च कर रहा है। जब से ये जमीन और आसमान कायनात बनी उस वक़्त से इस पे खर्च ही करता चला जा रहा है, कर रहा है ना खर्च, तो वो कुछ ले नहीं रहा बैक। तुम हो फकीर, तुम सब के सब फकीर हो, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम्हें सबको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी की इबादत की, ना किसी की एग्जिस्टेंस की। जब सब भी खत्म हो जाएगा और क़यामत आने लगी, अल्लाह ताला लपेट लेंगे आसमानों को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में ले लेंगे, और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन है जो बादशाह है आज, कौन है जो आज तकबर करने वाला है, मुतकबर है। कोई जवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तब भी है जब कोई नहीं, और तब भी था जब कोई नहीं था, तो वो तो गनी है, तुम हो फकीर। तो तुम ये ना सोचो कि भाई अल्लाह को मैं दे रही हूं, उसको कोई हेल्प कर रही हूं, जो तुम करते हो अपने लिए करते हो, और बुखल भी करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। वह इन ततवल्लव, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे, नहीं ये काम करोगे, अल्लाह की रसूल की इताअत से फिर जाओगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करोगे, अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं करोगे, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, वो बदल देगा एक कौम को तुम्हारी जगह पर तुम्हारे सिवा, सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। तो तुम नहीं करोगे ये सारे काम, अगर तुम इस जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दी है इसकी कदर नहीं करोगे, जो इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसकी कदर नहीं करोगे, तुम अल्लाह ताला की दीन की खिदमत नहीं करोगे, तो फिर अल्लाह ताला किसी और को ले आएगा। अल्लाह को किसी की मोहताजी नहीं है, फरमा दी अल्लाह गनी है, तुम्हें जरूरत है, अल्लाह को जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हारी जगह वो कोई और ले आएगा जो ये काम करेंगे, वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, अल्लाह तुमसे ये सादत छीन लेगा। और देखें जब अरबों ने ये काम करना खत्म कर दिया, तो फिर कौन मुहद्दिसीन बड़े बड़े निकले? इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, नसाई हैं, तिरमिज़ी हैं, इनमें कोई अरब नहीं था, ये सब गैर अरब लोग थे। आज भी अरबों में काम नहीं हो रहा तो आप देख लें वेस्ट में काम हो रहा है दीन के ऊपर, और जिनको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं अजमी लोग हैं ना, इनमें काम हुआ बहुत, बड़े बड़े उलमा निकले हैं वहां से। आज देख लें तफसीरों, कितनी उर्दू की तफसीरें आपको मिलेंगी, उतनी और जुबानों में नहीं मिलती आपको, इसलिए कि काम हुआ यहां पे। तो सबसे अव्वलीन मुखातिब तो वो लोग थे ना, अगर तुम नहीं करोगे काम अल्लाह औरों को ले आएगा। अल्लाह ताला के दीन को मोहताजी नहीं है किसी की। इसी तरह आज हर एक के लिए, हर उसके लिए जो सोचता है कि मैं मुसलमान हूं और मैं जो हूं कोई काम कर रहा हूं और बड़ा सर्व कर रहा हूं, या मैं बड़ी बहुत बड़ी खिदमात दे रहा हूं, तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऑनर दिया कि तुम्हें चूज किया अल्लाह ने। अगर तुम नहीं भी करते तो अल्लाह का काम रुकता नहीं है, फिर कोई और कर लेगा, किसी और को अल्लाह ताला खड़ा कर देगा, किसी और कौम को। और आप दुनिया में ये देखते रहे हैं, टाइम टू टाइम कितनी कौमें उठी हैं और उन्होंने काम किया है। तो इंडिविजुअल्स में भी खुद को समझना चाहिए, इसी तरह मैं नहीं करूंगी कोई और आ जाएगा, वो नहीं करेगा कोई और आ जाएगा, अल्लाह ताला खड़ा कर देगा किसी को। इसलिए मैं अपने आप को जरूरत ना समझूं इस दीन की, बल्कि मुझे जरूरत है इसकी, मैं उसकी जरूरत नहीं हूं। अल्लाह ताला हम सबको इन आयात पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाइए, और इसके बाद हमें ये तौफीक दे कि हम हक और बातिल का फ़र्क पहचान के हक के साथ खड़े हों। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन की सफ़ में शामिल ना फरमाना, अल्लाह ताला हमारे ईमानों को खालिस कर दे अपनी खातिर, और हमारे ईमानों को मजबूत कर दे, اور اپنی رضا میں رہنے کی، رضا میں راضی رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی کراہت کریں اللہ کی نازل کردہ آیات کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر، اور منافقین والی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نکال دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.